हरे कृष्ण। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है यहाँ पर श्री राधा कुंज बिहारी के वैष्णव की सेवा का अवसर मिल रहा है। हम सब भगवान कृष्ण के कृपा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। भक्ति योग की विधि ये कृपा पर आधारित है। जब हम भगवान के चरणों में गिरकर उनकी कृपा मांगते हैं तब हम मानव जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये भवसागर इतना अथाह है, इतना गहरा है कि इसको पार करना अपने प्रयास से संभव नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके नाम का आश्रय लेते हैं, तो हम बड़े आसानी के साथ इस विशाल भवसागर को पार कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तीते। गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया शक्ति को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कोई व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार करता है वो बड़े आसानी से माया को पार कर सकता है। भगवान की शरणागति को लेने का अर्थ है उनके नाम का आश्रय लेना, क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। चैतन्य चरितामृत के श्लोक में बताया गया है कि कलयुग में भगवान अपने सारे शक्तियों के साथ नाम के रूप में आए हैं, और इस नाम को जप करने से हम आसानी से भवसागर को पार कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षाष्टकम श्लोक में बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृश्यम इहा जनिनानुराग। वे श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे आपके बहुत सारे नाम हैं और इस नाम जप को करने में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं हैं। भगवान के नाम कभी भी लिया जा सकता है, किसी भी समय लिया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर भी भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पर साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति का एक सिद्धांत है कि भगवान के नाम और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। और महाप्रभु बताते हैं कि हे भगवान, आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति रखी है, लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, संदिनी शक्ति, तटस्था शक्ति, बाह्य शक्ति, अंतरंग शक्ति, सारी शक्तियां नाम में हैं। भक्ति का तत्व है कि नाम और नामी अभिन्न है, लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य है, महाप्रभु कहते हैं कि मेरे को इस नाम में अनुराग नहीं है, मेरे को इस नाम में आसक्ति नहीं है। तो ये नाम में आसक्ति कैसे जागृत हो, ये महाप्रभु स्वयं बतलाते हैं। जब हम नाम जप को उस भावना से करते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षाष्टकम में सिखाते हैं, तब फिर हम नाम जप सच्चे दिल से कर सकते हैं। नाम कृष्ण से अभिन्न है। जैसे हम कृष्ण के सामने जाते हैं, अर्च विग्रह के सामने जाते हैं और उनसे कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे नाम भी अर्च विग्रह से अभिन्न है। नाम के सामने भी वही भावना होनी चाहिए जो भगवान के साक्षात दर्शन में होती है। एक भक्त नाम जप करते हैं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरे भक्त कौन है, सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रत नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। जो मेरे भक्त हमेशा मेरे नाम कीर्तन में लगे रहते हैं वो मेरे भक्त हैं. डोंट चेंज इट इन बिटवीन, उसको फिक्स्ड रखिए. डोंट चेंज इट इको, डोंट सेट. भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो सतत मेरे नाम में मग्न रहते हैं. महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज जैसे संत हुए जो हमेशा नाम कीर्तन में मग्न रहते थे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर हुए जो कि नामाचार्य कहे जाते हैं, ऐसे भक्त जो कि हर समय भगवान के नाम में मग्न रहते थे. हरिदास ठाकुर रोज 192 माला जप करते थे, 192 राउंड्स, और इतना जप करने के बाद में वो जल ग्रहण करते थे. ये उनकी स्ट्रिक्ट साधना थी. कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए स्ट्रिक्ट साधना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण भक्ति एक अनमोल रत्न है, और अगर हम इस रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए उसका कीमत देना होगा, उसका प्राइस देना होगा. और प्राइस है लौल्यम, तत्र लौल्यम अपि मूल्यत. कृष्ण कृपा या कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए कीमत है इंटेंस ग्रीड. भक्त को बहुत लोलुप होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए. जब हम कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए लोलुप होते हैं तब हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो कृष्ण भक्ति ये अनमोल रत्न है, और ये रत्न प्राप्त करने के लिए भक्त को कठोर साधना करनी चाहिए. साधना इसलिए नहीं कि जिससे उसको कुछ लाभ प्राप्ति हो, लेकिन वो साधना इसलिए जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए. समसिद्धिर हरि तोषणम, भगवान हरि या भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए उस उद्देश्य से. तो हरिदास ठाकुर रोज 192 राउंड्स जप करते थे और बाद में प्रसाद लेते हैं. अभी हमको यहाँ इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरल नियम दिया, सिर्फ 16 माला, उसमें भी हम 4 माला करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट, फिर 4 माला, उसके बाद लंच, फिर 4 माला के बाद डिनर, और बाकी बेडरूम में 4 माला. कीर्तनीय सदा हरि, एक्चुअली कीर्तनीय सदा हरि का मतलब ये नहीं है कि दिन कीर्तनीय सदा हरि का मतलब है कि हम हर समय भगवान का नाम लें, लेकिन 16 माला मिनिमम हमें सवेरे करना चाहिए. आज मेरा यहाँ आने का प्लान नहीं था, आज सवेरे ही मैंने प्लान बनाया कि मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मैं राधा कुंज बिहारी के भक्तों से कुछ मांगने के लिए आया हूँ. आप चिंता मत करिए, मैं पैसे नहीं मांगने वाला, नहीं तो आप बोलोगे पैसे यहाँ मंदिर के लिए ही चाहिए. आज मैं कुछ आपसे व्यक्तिगत रूप से मांगने आया हूँ, दक्षिणा मांगने आया हूँ. आप सब देंगे दक्षिणा? श्योर? आवाज़ बहुत धीरे है, इसका मतलब सब लोग नहीं देना चाहते. सब लोग दक्षिणा देंगे तो ही मैं आगे प्रवचन करूँगा. जो लोग दक्षिणा देना चाहते हैं तो हरी बोल बोलिए. ठीक है, अभी राधा कुंज बिहारी साक्षी हैं. ठीक है, प्लीज़ ट्राई, मैं कंपल्शन नहीं करूँगा, लेकिन मेरी दक्षिणा वो है कि आप सब जो भी अपना जप करते हैं, जो 16 माला जप करते हैं, मिनिमम श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है 16 माला जप करना, और जितना भी आप हो सके थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि ये 16 माला जप जो है आप वो सवेरे उठकर करें, अपने ब्रेकफास्ट लेने से पहले, अपना नाश्ता लेने से पहले. इज़ दैट गुड आइडिया? अभी आवाज़ कम हो गई फिर. लेकिन आपको मालूम है वामन देव पहले आए थे तो बलि महाराज से 3 कदम जमीन मांगा था, और एक बार हाँ बोलने के बाद ना नहीं होता. मैंने ये फॉर्मूला ट्राई किया बम्बई में और हैदराबाद में, बेंगलोर में, निगड़ी में, और कोल्हापुर में भी. मैंने भक्तों से निवेदन किया कि वो ऐसा एक प्रतिज्ञा लें एक व्रत ले कि मैं सवेरे के जो ब्रेकफास्ट है नाश्ता लेने से पहले मैं अपने 16 राउंड्स पूरा कर लूँ। और एक दो महीने बाद जब मैंने भक्तों से प्रश्न पूछा कि उनको कैसा अनुभव है, तो भक्तों ने बताया कि उनको बहुत लाभ हुआ उनकी साधना में, क्योंकि यहाँ राधा कुंज बिहारी मंदिर में साधना के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम दोनों में। इसलिए मेरे ख्याल से आप में से अधिकांश भक्त पहले ही जप करते ही होंगे, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त नहीं करते हों तो आज से, आज तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट हो गया, कल से आप शुरू कर सकते हैं। इज दैट गुड आइडिया? सबको स्वीकार है ये मेरा दक्षिणा? मैंने एक भक्त से पूछा फ़ोन पे कि आपका जप कैसा चल रहा है, आपने जो प्रतिज्ञा की थी 16 माला जप करना ब्रेकफास्ट से पहले, वो कैसे चल रहा है? तो बोला मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है, लेकिन कभी कभी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं उसके, क्योंकि पहले एक दो दिन आपको तकलीफ होगी, लेकिन एक महीने दो महीने बाद जब मन स्थिर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवतम के परपोर्ट में कि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। जो सवेरे का समय है स्पेशली 4 बजे से लेकर 7 बजे या 8 बजे तक, उसको ब्रह्म मुहूर्त समय बोलते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। और कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो ब्रह्म मुहूर्त के समय की जाती है उसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते हैं कि मेरे को भगवान के नाम में कोई अनुराग नहीं है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, वो एक भक्त के रोल में बता रहे हैं कि कैसे भक्त को भगवान के लिए तरसना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे भक्त को भगवान के विरह में तरसना चाहिए। जैसे कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिलती या मिलने के बाद खो जाती है तो हम तरसते हैं उसके लिए, ऐसे भक्त को कृष्ण के विरह में तरसना चाहिए। हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ है भगवान से विरह अनुभव करना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वन शुड बी चैंटिंग विथ फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम गॉड। भक्त को नाम जप करना चाहिए विरह की भावना से। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद शूनो कुता। ये षड गोस्वामी अष्टक से है ये श्लोक, कि वृंदावन के गोस्वामी ऐसे पुकारते थे, हे राधा रानी, हे कुंज बिहारी, हे कृष्ण, आप कहाँ पर हो? क्या आप गोवर्धन में हो? क्या आप यमुना के किनारे हो? तो भक्त जब नाम जप करते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। नाम जप एक औपचारिक, एक फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि नाम जप एक हृदय की रुदन होनी चाहिए, एक हृदय की क्राई होनी चाहिए। The soul is crying for the mercy of God. That is real chanting. When the soul is longing. जब आप सच्चे रूप से नाम जप करोगे तो आपके आँखों से आंसू आने लगेंगे। नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गद गद हृदया गिरा, पुलकेर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहेण भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि वह समय कब आएगा जब मैं नाम जप कर रहा हूँगा और मेरे आँखों से आंसू आने लगेंगे, मेरा शरीर कांपने लगेगा। भागवतम के दूसरे स्कंद में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है और नाम जप करते समय उसके आँखों से आंसू नहीं आ रहे, शरीर में कंपन नहीं हो रहा, रोमांच नहीं हो रहा, शरीर के बाल खड़े नहीं हो रहे, इसका मतलब उसका हृदय बहुत कठोर है। हिज हार्ट इज स्टील फ्रेम्ड, स्टील का या लोहे का बना हुआ है। एंड इट इज़ ड्यू टू ऑफेंसेस, ये अपराधों के कारण है। कृष्ण नाम इतना मधुर है कि अगर कोई सिंसियर भक्त, सच्चा भक्त कृष्ण नाम लेता है तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो अमृत के सागर में डुबकी लगा रहे। लेकिन जब हम अपराध भावना में होते हैं, जब हमारा हृदय अपराधों से भरा हुआ होता है, तो हरे कृष्णा कहने पर भी हमें कृष्ण के कृपा का अनुभव नहीं होता। और हो सकता है कि आप 10 जन्म तक, 10 साल, 100 साल, 1000 साल तक जप करते रहें, 1,00,000 जन्म तक भी, और आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। हो सकता है आप सुबह उठ के भी कर रहे हो सकता है आप जोर जोर से कर रहे हो, लेकिन जब तक आप अपराध से मुक्त नहीं होंगे तो आपका प्रयास सफल नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, कृष्ण इज़ अ पर्सन, गॉड इज़ अ पर्सन, नेम इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम गॉड। जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है, इसलिए नाम भी व्यक्ति है। तो श्री नाम प्रभु जब देखते हैं कि आपके हृदय में अपराध की भावना है तो आपको कृपा नहीं प्रदान करते। तो नाम जप करने के लिए हमें अपराध से मुक्त होना चाहिए। 10 नाम अपराध आप सब जानते हैं, रोज़ सवेरे हम बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम बोलते भी हैं और फिर करते भी हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम 10 नाम अपराध से बचें। और फिर भी अनजाने में अगर कोई नाम अपराध हो जाए तो वह गौर निताई के चरणों का आश्रय लेने से वो अपराध दूर हो जाता है। इसलिए जब हम जप शुरू करते हैं तब हम पंचतत्व का आश्रय लेते हैं। वी टेक शेल्टर ऑफ द पंचतत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हम पंचतत्व से प्रार्थना करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ये बहुत दयालु हैं और उनको स्मरण करने से सारे अपराध दूर हो जाते हैं, सारे अपराध दूर हो जाते हैं। तो भक्त को कोशिश करना चाहिए कि मैं अपराध नहीं करूं नाम जप में। जैसे आप प्रसाद बनाने के लिए गैस या स्टोव जला रहे हैं, आप प्रसाद बनाने के लिए गैस जला रहे हैं, स्टोव जला रहे हैं और ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो वो स्टोव नहीं जल पाएगा। ऐसे ही हम हमारे हृदय में हरि नाम के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ अगर हम अपराध कर रहे हैं तो वो प्रेम जागृत नहीं होगा। इसलिए भक्त को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि मैं अपराध नहीं करूं। सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। एक वैष्णव के प्रति अपराध करने से नाम जप में बहुत बाधाएं आ सकती हैं। चैतन्य भागवत में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है और साथ में वैष्णव का अपराध कर रहा है, वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो वो नाम ही उस वैष्णव, उस अपराधी का नाश का कारण बन जाएगा। उसका नाम जप ही उसके नाश का कारण बन जाए। जैसे आपने गोपाल चापल की कहानी सुनी है, गोपाल चापल श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध कर रहे थे। श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन हो रहा था और गोपाल चापल को अंदर प्रवेश नहीं था, तो श्रीवास ठाकुर अंदर कीर्तन कर रहे थे। जब गोपाल चापल ने बहुत देर दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला, तो बड़े क्रोधित हो गए और अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं कुछ इनकी बदनामी करूँगा। उन्होंने बाहर एक प्लेट रखी, श्रीवास के घर के बाहर एक प्लेट रखी जिसमें मांस और सब शराब, गंदी चीज़ें रखी, जिससे सवेरे के समय जब लोग दरवाज़ा खोलेंगे तो देखेंगे कि श्रीवास इन सब गंदे कार्यों में लगे हैं। सवेरे के समय जब श्रीवास ठाकुर उठे तो उन्होंने देखा ये चीज़ें, और उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ सबको बुलाकर बोलने लगे, देखो देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर मैं होता या आप होते तो हम सबको बोलते, नहीं मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब ब्लास्फेमी है, वैष्णव अपराध हो रहा है, मैं परम वैष्णव हूँ, परम नहीं स्मॉल वैष्णव हूँ। लेकिन श्रीवास ठाकुर ही डिड नॉट टेक एनी ऑफेंस। श्रीवास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कोई हम भगवान के भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो भक्त तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। उसका फल ये हुआ कि गोपाल चापल को बीमारी हो गई, उसको लेप्रेसी हो गई, उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग भर गया, और उसने महाप्रभु से माफ़ी मांगने का भी प्रयास किया, लेकिन महाप्रभु बोले, नहीं तुम तो जन्म जन्म दुख भुगतते रहो, मे यू सफ़र इटर्नली। अंत में जब गोपाल चापल ने श्रीवास ठाकुर से क्षमा मांगी तो उसके अपराध दूर हो गए। जैसे और भी कई अपराध हैं, 10 प्रकार के अपराध, उन अपराधों से बचना चाहिए, फिर नाम जप की महिमा प्रकट होती है। नाम जप में एक महत्वपूर्ण दूसरा स्टेप है कि कृष्ण की कृपा के लिए पुकारना। बाइबल में कहा गया, सीक एंड ई शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपेंड। आप खोजोगे तो मिलेगा, आप खटखटाओगे तो दरवाज़ा खुलेगा। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो इस भावना से होना चाहिए कि मैं भगवान की कृपा मांग रहा हूँ। जैसे अभी मेरे प्रवचन के पहले एक प्रभु जी बहुत सुंदर आवाज़ में गा रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो हर समय नाम जप के पहले स्पेशली इसका पहला लाइन मन में गाना चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। अगर आप दया मांगोगे तो भगवान दया देंगे, अगर आप मांगोगे नहीं तो कैसी दया मिलेगी। जैसे अभी कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद है कि नहीं, इसी आशा से चल रहा है कार्यक्रम। कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद है, लेकिन जहाँ पर प्रसाद वितरण होता है वहाँ पर आपको जाकर पत्तल लेकर मांगना होगा। अगर आप गार्डन में बैठ जाते हैं और सोचते हैं अपने आप प्रसाद आएगा तो मुश्किल है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है कोई डिवोटी आपके लिए ले आ जाए, लेकिन आपको मांगना होगा। और अगर आपको सेकंड सर्विंग चाहिए, आपको हलवा और चाहिए, तो आपको मांगना होगा। पात्र भगवान की कृपा सागर के समान है, जितना बड़ा आपका बर्तन है उतना आप कृपा प्राप्त कर सकते। किसी के पास छोटा गिलास है उसको थोड़ी कृपा मिलती है, किसी के पास 1 लीटर का बर्तन है उसको ज़्यादा कृपा मिलती है, किसी के पास 10 गैलन का है ज़्यादा कृपा मिलती है, जो किसी के पास 1000 गैलन का है। तो भगवान की कृपा तो जितनी भी आप निकालो मिल सकती है, हमें कम मिल रही है क्योंकि हमारा बर्तन छोटा है, या नहीं मिल रही क्योंकि बर्तन ही नहीं है। हमारा हृदय बर्तन के समान है, ये हृदय को विशाल करना है, और विशाल करने का तरीका चैतन्य महाप्रभु अगले श्लोक में बताते हैं। नादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। एवरीबडी, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु इस श्लोक में बताते हैं कि क्या करने से हमें भगवान की कृपा जल्दी मिल सकती है। सेम नाम है, सेम मंत्र, सेम माला, और एक भक्त जप कर रहे हैं और उनको एक्स्टेसी का अनुभव हो रहा है, प्रेम का अनुभव हो रहा है, और दूसरे भक्त जप कर रहे हैं और उसको नींद आ रही है, मुश्किल से पूरा हो रहा है। सेम मंत्र, सेम परंपरा, सेम टेंपल में, सेम ड्यूटीज के सामने, दोनों को अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिखाते हैं त्रिनादपि सुनिचे नकारत। जब महाप्रभु विद्या लीला कर रहे थे, जब महाप्रभु स्कॉलर थे नवद्वीप में, वो पाठशाला में पढ़ते थे, और एक बार वो अपने एक मित्र के साथ गंगा पार कर रहे थे, और उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी महाप्रभु ने, और वो कविता पढ़ के अपने मित्र को सुना रहे थे, और उनके मित्र वो भी कवि थे। जब महाप्रभु की कविता को उन्होंने सुना तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, उनके मित्र रोने लगे। तो महाप्रभु ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? तब उसने बताया कि मैंने भी ऐसी कविता लिखी है यही विषय पर, लेकिन आपकी कविता इतनी अच्छी है, आपकी कविता इतनी सुंदर है कि अब मेरी कविता को कोई पढ़ेगा ही नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि आप विजयी हो गए। तो महाप्रभु बोले, अगर ऐसा है तो मेरी कविता लिखने से आपकी कविता को महत्व कम हो जाएगा, तो मैं अभी ये कविता को फेंक देता हूँ। उन्होंने कविता को गंगा जी में बहा दिया। उसके बाद आज तक किसी को पता नहीं है वो कविता में क्या था, कि महाप्रभु ने एक ही कविता लिखी थी और शिक्षाष्टकम श्लोक लिखे जो हमें पता है। महाप्रभु दिखा रहे हैं कि दूसरों को मान देना और स्वयं मान नहीं चाहना, दूसरों को फर्स्ट आगे भेजना और स्वयं पीछे रहना। भी आज के जगत में होता, दो स्टूडेंट्स होते तो दूसरे की कविता फेंक देते थे, या हो सकता है और एडवांस होते दूसरे को ही फेंक देते थे। मैनेजमेंट कॉलेज में बताया जाता है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल द सीक्रेट इज यू हैव टू पुट योर फीट ऑन अनदर्स हेड। सफलता की कुंजी क्या है? दूसरों के सिर के ऊपर अपना पैर रखना। लेकिन भक्ति में क्या है, भक्ति की सफलता क्या है? अपने सिर को दूसरे के चरणों पे रखने का सौभाग्य प्राप्त करना। ये मानना कि मेरा सौभाग्य है अगर गुरुदेव और सब वैष्णव, सब जीवात्मा अपने चरण कमल मेरे सिर के ऊपर रखे, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है। अगर मैं सबका आदर कर रहा हूँ तो कृष्ण जो उस व्यक्ति के हृदय में है वो प्रसन्न होते, और अगर मैं झुक रहा हूँ, अगर मैं प्रणाम कर रहा हूँ हृदय में स्थित परमात्मा के लिए है। तो महाप्रभु दिखाते हैं अपने उदाहरण से कि कैसे नाम जप करना है। त्रिनादपि सुनिचे, जब महाप्रभु वृंदावन जाते हैं, वृंदावन यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में जाते हैं। वाराणसी में एक भक्त होते हैं तपन मिश्र, और दूसरे भक्त है जिनका नाम होता है चंद्रशेखर। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे घर प्रसाद के लिए आइए, और साथ में उन्होंने मायावादियों सन्यासियों को भी बुलाया होता है। ये मायावादी सन्यासी के लीडर होते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, ही वॉज द चीफ ऑफ द मायावादीज। 60,000 डिसाइपल्स थे उनके, 60,000 शिष्य। प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी थे और वो सब अंदर बैठे थे, और चैतन्य महाप्रभु गए और महाप्रभु जानबूझ के दरवाजे के पास बैठ गए, ये दिखाने के लिए कि ये अभिमानी व्यक्ति हैं, इनके अभिमान को दूर करने के लिए मुझे त्रिनादपि सुनिचे न बनना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं बाहर बैठे रहे, जहाँ पे पैर धोए जाते हैं वो मलिन स्थान में। प्रकाशानंद सरस्वती और सारे सन्यासियों ने देखा कि महाप्रभु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, कोटि कोटि सूर्य के समान, ब्रह्म ज्योति के समान। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये सब मायावादी ब्रह्म ज्योति से आकर्षित होते हैं, तो उनको प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने ब्रह्म ज्योति का तेज प्रकट किया। हर एक के लिए अलग अलग ऑपुलेंस होता है, से अगर चोरों को भक्त बताना बनाना होगा तो हम बता सकते हैं कृष्ण परम श्रेष्ठ चोर है, उससे आकर्षित हो सकते। अगर कोई बिजनेसमैन को प्रीच करना है तो बताना है कृष्ण सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, कृष्ण बेस्ट हैं हर एक चीज़ में। प्रकाश चंद्र सरस्वती स्वयं बाहर आए और हाथ पकड़ के बोले आप अंदर आइए और बैठिए, हमारे से बातचीत करिए। और महाप्रभु से बात करने लगे, उन्होंने पूछा कि तुम भी हमारी तरह सन्यासी हो और तुम हमेशा कीर्तन करते रहते हो, ये कीर्तन तो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है, तुम्हें हमारे साथ रहकर शास्त्रार्थ करना चाहिए, ब्रह्म और जीव और मायावाद इस पर प्रवचन होना चाहिए, ये सत्संग है मायावादियों के अनुसार। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं। प्रकाशन सरस्वती ने प्रश्न पूछा कि आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हमारे साथ, वेदांत शास्त्र इतने प्रसिद्ध हैं। तो प्रकाशन चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, गुरु मोरे जानीला मूर्ख कुरियो शासन, माय गुरु महाराज टोल्ड मी दैट आई एम अ फूल, आई हैव नो राइट टू स्टडी वेदांत सूत्र। मेरे गुरुदेव ने बताया कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, मुझे बताया कि सिर्फ आप कृष्ण नाम लो। तो उनकी आज्ञा से मैं कृष्ण नाम ले रहा हूँ, और मैं कृष्ण नाम लेने लगा, मैं गाने लगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं जब कृष्ण नाम लेने लगा, मैं गाने लगा, तो मेरे आँखों से आंसू आने लगे, मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे शरीर में रोमांच होने लगा, और मैं गुरुदेव के पास गया, ईश्वरपुरी के पास, और मैंने पूछा कि वो मंत्र दिला गोसाई, व्हाट काइंड ऑफ मंत्र यू हैव गिवन, ये कैसा मंत्र दिया जिसको जपते जपते मैं दिव्य रूप से पागल हो रहा हूँ, ये क्या है। ईश्वरपुरी ने मुस्कुराकर कहा कृष्ण नामेर मंत्र एत स्वभाव, ये कृष्ण नाम जप का असली स्वभाव है, कि जो व्यक्ति इस तरह से कृष्ण नाम जप करता है उसके अंदर ये प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं। आपको सफलता मिल गई है नाम जप में, अब आप जाओ और ये मंत्र दूसरों को बांटो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरुदेव को, भगवान को और प्रभुपाद को खुशी होती है जब शिष्य भक्ति में आगे बढ़ते हैं। गुरु ये नहीं चाहते कि शिष्य सिर्फ धन लेकर आए या भौतिक चीज़ें लेकर आए, गुरु और भगवान चाहते हैं कि शिष्य का हृदय पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र हृदय में कृष्ण की कृपा प्रकट हो सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रकाशचंद्र सरस्वती को कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि आप सिर्फ हरि नाम गाओ और दूसरों को हरि नाम दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और तब से मैं हरि नाम का जप कर रहा हूँ। और उन्होंने प्रकाशचंद्र सरस्वती को भी समझाया कि कैसे वैष्णव फिलॉसफी सत्य है और मायावाद जो कि शंकराचार्य ने प्रचार किया था वो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन अब वास्तव में उसमें कई सारे गलतियां हैं। और प्रकाश आनंद सरस्वती और उनके 60,000 वैष्णव शिष्य, 60,000 मायावादी शिष्य सब वैष्णव बन गए, पूरे वाराणसी नगरी में महासंकीर्तन हो गया। अब सोचिए अगर 60,000 लोग कीर्तन में जा रहे हैं, वो भी भगवे कपड़े में, वो भी दंडे लेकर, रियली अमेजिंग, पूरा वाराणसी टाउन कीर्तन से भर गया। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि अगर हम भगवान कृष्ण जो करुणा सिंधु हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, तो ये करुणा के सागर हैं। अगर आप करुणा चाहते हो तो बर्तन बड़ा होना चाहिए, और जितना आपके अंदर अभिमान है, जितना आपके अंदर फॉल्स प्राइड है, मिथ्या अहंकार है, उतना आपका बर्तन छोटा हो जाता है। जितना आपके अंदर नम्रता है, शुद्धता है, जितना आपके अंदर सेवा भावना है, उतना ज़्यादा कृपा प्राप्त होती। साइंस में या फिजिक्स में एक या इंजीनियरिंग में एक लॉ है, ओम्स लॉ। ये ओम, ये वाला ओम नहीं है, ये दूसरा ओम, OHM, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में ऐसे बताया जाता है कि अगर आप किसी पावर से, जैसे यहाँ पर पावर सप्लाई है, इससे अगर आप कुछ पावर ले रहे हो, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो, तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना विरोध कम होगा, उतना करंट ज़्यादा होगा। करेक्ट प्रभु जी, यू आर इंजीनियर, यू नो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इफ द करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, 23 इयर्स बैक आई स्टडीड, इट इज स्टिल द सेम। इफ द रेजिस्टेंस इज मोर, द करंट विल बी लेस। अगर विरोध ज़्यादा होगा तो जो करंट आ रहा है वो कम होगा। सेम सेम पावर है, सेम शक्ति से। ऐसे हमारे हृदय में जो अहंकार है वो रेजिस्टेंस है, विरोध है। जितना अहंकार ज़्यादा होगा, उतना जो करंट आ रहा है, कृष्ण की कृपा का करंट है, वो बहुत कम आएगा। और रेजिस्टेंस कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा करंट आएगा। और रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तो अनंत कृपा मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि भगवान की कृपा ज़्यादा मिले, तो अपने हृदय के रेजिस्टेंस को कम करना है, विरोध। गुरु और कृष्ण चाहते हैं कि आपको पूरी कृपा मिल जाए एक ही दिन में, एक ही क्षण में, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते। कृष्ण की कृपा असीमित है। और ऐसे नहीं है कि पहले व्यक्ति ने एक पूरी बाल्टी भर ली तो इसलिए कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि हमारे घर में पानी होता है तो टैंक होता है, अगर कोई पहले भर ले तो बाकी पीछे वालों को पानी नहीं मिलता। लेकिन भगवान की कृपा 100 गैलन या 1000 गैलन नहीं है, भगवान की कृपा अनंत है। कृष्ण अनंत है, कृष्ण की कृपा अनंत है, कृष्ण का नाम अनंत है, कृष्ण के रूप अनंत है, कृष्ण की लीला अनंत है। कृष्ण चाहते हैं कि हमें कृपा प्राप्त हो, और उसके लिए एक ही गुण है कि हमें सरल होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं जो नए भक्त होते हैं, जो भक्ति में अभी अभी आए हैं, उनके लिए जप करना आसान होता है, और कुछ सालों के बाद हृदय में एक प्रकार की टेढ़ापन आ जाता है, कठोरता। उसके कारण हम नाम जप में रुचि नहीं ले पाते। कि नए भक्त होते सोचते हैं सब अच्छे हैं, सब पूजनीय हैं, और मुझे नाम जप करना है सीरियसली, दिस इज़ माय लाइफ एंड सोल। लेकिन 2-4 साल बाद दीक्षा हो जाती है, भगवे कपड़े मिल जाते हैं, हम सीनियर बन जाते हैं, तो हम सोचते हैं ये नाम जप ना, ये तो नए भक्तों, आप सीख लो नए भक्तों के लिए ठीक है, मैं तो अभी एडवांस्ड हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, वैष्णविज्म मीन्स टू बी सिंपल, सिंपली सिंपल। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णव। अगर आप सरल हैं स्वभाव से, आपको कृष्ण की कृपा बहुत जल्दी मिल जाएगी। दंडवत, दंडवत का मतलब होता है दंडे की तरह गिरना, एक रॉड की तरह। तो गुरु और वैष्णव और भगवान के सामने स्ट्रेट, सरल स्वभाव। और दूसरा है स्नेक, सांप की तरह टेढ़ा होना। भक्त को सरल होना चाहिए, सरल होने से भगवान की कृपा बहुत जल्दी मिल जाती है। भौतिक जगत में अगर आपको कुछ काम करना है तो सरलता से काम नहीं होता, टेढ़े उंगली से घी निकालना पड़ता है। लोग बोलते हर एक चीज़ के लिए चालाकी करनी होती है, बिजनेस में, व्यापार में, इवन डोनेशन कलेक्शन करने में कई बार भक्तों को करना होता है। लेकिन जब हम भगवान के सामने आते हैं, जब हम नाम जप के सामने आते हैं, गुरु के सामने आते हैं, तब हमें कोई चालाकी की जरूरत नहीं है। हृदय को स्वच्छ रखना चाहिए। Those who know, they say they know not. Those who say they know not. समझ आया आपको? कि जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे सब मालूम है, उसको कुछ नहीं पता है। और जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, वो व्यक्ति को सब ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि दिव्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान में अंतर है। भौतिक ज्ञान में आप अपना रेज्यूमे देते हैं, अपना एप्लीकेशन देते हैं, तो बड़े बड़े चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, जो आपको नहीं मालूम है वो भी बताना पड़ता है कई बार। लेकिन भक्ति में, भक्त का मतलब है जो सोचता है, शक्ति बुद्धि न आमी अति दीन करो मोरे आत्म साथ, कि गुरुदेव मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई एम अ बेगर, मैं भिक्षुक हूं। एक भिक्षु की क्या योग्यता है? भिक्षु की कोई योग्यता नहीं है, भिक्षा मांगने के लिए क्या योग्यता? शुड जस्ट बी विथ ओपन हैंड्स, खुले हुए हाथों से भिक्षा मांगना। अगर हाथ ऐसे हैं तो भिक्षा नहीं मिल सकती, ऐसे मांगना। इसलिए भक्त हमेशा हाथ जोड़े रहते हैं कृपा मांगने के, परमात्मा को देखते हुए। देन वी बिकम रिसिपियंट्स ऑफ कृष्णाज मर्सी एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स ऑल्सो। अगर ऐसा हमारा सरलता है हमारे हृदय में, तो हम एक कृपा को प्राप्त भी करते हैं और दूसरों को भी बांट सकते हैं। एक अच्छे प्रचारक बनने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए भौतिक योग्यता की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो बहुत अच्छा है, आप शास्त्र पढ़े हैं, श्लोक जानते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वेरी गुड। लेकिन उससे लोगों का हृदय नहीं बदलेगा, उससे लोग इम्प्रेस होंगे, लेकिन हृदय बदलेगा जब आपके अंदर सरलता की भावना है। जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान के हाथ में, मैं वीणा हूँ और मेरे गुरु महाराज और प्रभुपाद और कृष्ण वो वीणा को बजाने वाले हैं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब गोदावरी के किनारे जाते हैं दक्षिण भारत में, आप में से किसी ने देखा है वो स्थान गोदावरी के किनारे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले थे? आप में से कोई भक्त गए? नहीं, कुवूर बोलते हैं राजमुंडरी के पास, कोई गए हो तो हाथ ऊपर करिए। अब गए? मैं भी फिर किसी दिन मैं आप सबको ले जाऊँगा वहाँ पर, बहुत सुंदर स्थान है, ब्यूटीफुल। चैतन्य महाप्रभु जस्ट संन्यास लेकर दक्षिण भारत जा रहे थे और रामानंद राय वहाँ पर निवास करते थे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को देखा तो दोनों इतने प्रसन्नता से गले मिले एक दूसरे से। और फिर रामानंद राय शूद्र गृहस्थ हैं और चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण हैं और सन्यासी हैं। जनरली एक सन्यासी ज्ञान देते हैं और गृहस्थ ज्ञान ग्रहण करते हैं, जनरली कभी कभी गृहस्थ भी प्रवचन करते हैं, लेकिन सन्यासी को ज़्यादा अधिकार है। और जनरली एक ब्राह्मण, वर्णाश्रम के नियम के अनुसार एक ब्राह्मण का ज़्यादा आदर किया जाता है शूद्र से। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो सबसे ऊंचे ब्राह्मण हैं और वो प्रश्न पूछ रहे हैं रामानंद राय से, जो कि शूद्र परिवार से। और ये जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप है वो दिखाता है कि कैसे भक्ति में वर्ण और आश्रम महत्वपूर्ण नहीं है। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न होय, जय कृष्ण तत्व वेति सही गुरु है। चाहे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो कोई कृष्ण के तत्व को जानता है वो व्यक्ति गुरु है। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखाते हैं नम्रता, रामानंद राय से ज्ञान ग्रहण करते हैं। उस वार्तालाप के दौरान चैतन्य महाप्रभु अनेक प्रश्न पूछते हैं और उसमें से एक प्रश्न होता है, उपास्य मधेर कौन उपास्य है। सब प्रकार के उपासनाओं के जो ऑब्जेक्ट हैं जिसकी पूजा की जानी चाहिए उसमें सबसे ऊंचा क्या है? राय रामानंद जवाब देते हैं, सब उपास्यों में श्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे ज़्यादा पूजनीय वस्तु है। और महाप्रभु जब रामानंद राय का गुणगान करते हैं तो रामानंद राय कहते हैं कि मैं वक्ता नहीं हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक यंत्र हूँ और आप मेरे द्वारा बोल रहे हैं, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। तो ये योग्यता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए और उस कृपा को सबको वितरित करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से हमें दिखाते हैं। शिला भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जो कि शिला प्रभुपाद जी के एक बहुत सीनियर शिष्य हैं और कुछ साल पहले भगवान के धाम वापस गए, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं ऐसे। पुस्तक का नाम है बेगर भिक्षुक। ये कैसे भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छा भिक्षुक बनना चाहिए, एक भिखारी बनना चाहिए। और भिखारी बनने का मतलब नम्र रहना। अगर कोई भिक्षा मांगने जाता है तो ये आशा नहीं की जाती कि तुरंत उसको भिक्षा मिल जाएगी। कई बार भिखारी को बार बार मांगना पड़ता है। आप अगर कभी कार में जा रहे हैं मुंबई में या पुणे में कहीं पर भी, ट्रैफिक के पास जब कार रुक जाती है तो आप देखते हैं कई भिखारी आते हैं, या ट्रेन में आप देखते हैं कई भिखारी है। उन भिखारियों को अपना आप गुरु मान सकते हैं, क्योंकि वो आपको सबसे अच्छा लेसन सिखा रहे हैं। वो भिखारी के पास, भिखारी आपसे कुछ मांगते हैं और आप बोलते हैं नहीं, तो आप इधर देखते हैं और वो भिखारी घूम के इधर आ जाते हैं, फिर आप बोलते हैं नहीं, फिर इधर थोड़ा सा कुछ। अगेन एंड अगेन परसिस्टेंस, बार 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 वो मांगते, फिर अंत में व्यक्ति का मन बदल जाता है, चलो कुछ तो देता हूँ, थोड़े से कुछ 10 रुपये 5 रुपये या कुछ थोड़ा प्रसाद दे दे। ऐसे हमें भगवान से भिक्षा मांगनी है, कृपा करो। हमें आशा नहीं कर सकते कि आज मैंने सवेरे कृपा मांगी, शाम तक थोड़ा सा डाउन पेमेंट मिल जाएगा, फिर कल तक पूरा बाकी का बचा हुआ कृपा, अब परसों मुझे कृष्ण और राधा रानी दिखाई पड़ेंगे गोपियों के साथ, रासलीला हो रही होगी, और अगले रविवार तक भगवान के धाम के दर्शन हो जाए। ऐसा नहीं, भक्ति इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक क्रमिक विकास है, और वो उस पर डिपेंडेंट है कि कितनी सरलता के साथ आप मांगते। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने पर भी हमें सोचना चाहिए कि मैं नया भक्त हूँ। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि आज मैं पहली बार मैं नया भक्त हूँ मंदिर में, तो उससे आपके सबके प्रति आदर भाव रहेगा और आपके अंदर उत्कंठा रहेगी कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के। यू बी ईगर टू रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। बाइबल में कहा गया है ओनली द हम्बल एंड द मीक शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के राज्य को कौन प्राप्त करेगा? जो नम्र है। त्रिनादपि, सेम क्रिश्चियन धर्म में और गौड़ीय वैष्णव में सेम प्रिंसिपल। जीसस क्राइस्ट से एक बार उनके अनुयायियों ने पूछा कि हमारे में से कौन सबसे बड़ा है, हमारे आपके सब शिष्यों में। ऐसा लगता है कि 2000 साल पहले भी एक कंपटीशन की भावना थी कि कौन ज़्यादा अच्छा है। जीसस क्राइस्ट ने बताया, ही अमोंग यू हु सर्व्स ऑल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। आप में से जो सबकी सेवा करने को तैयार है वही सबसे महान है, अर्थात जिसके अंदर ये भावना है त्रिनादपि सुनिचेन, वो सबसे महान है। अपने शरीर को त्याग करने से पहले जीसस क्राइस्ट हाथ में एक पानी का लोटा लेकर अपने सारे शिष्यों के चरण धोने जाते हैं। सब शिष्यों को आश्चर्य होता है कि ये आप क्या कर रहे हो, आप हमारे गुरु हो, कभी देखा नहीं है शास्त्र में कि गुरु शिष्यों के पैर धो रहे हों। अरे ये लीला हो रही है लग रहा है, ड्रामा गोइंग ऑन। जीसस क्राइस्ट हैज कम हियर नाउ, कृष्णा अरेंजेड एवरीथिंग परफेक्टली, इट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। तो जीसस क्राइस्ट जब ऐसा करते हैं तो उनके सारे शिष्य पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप हमारे गुरु हो। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, मैं अपने उदाहरण से सिखाना चाहता हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपका गुरु होकर अगर मैं आपके चरण धो सकता हूँ तो आपको कितना एक दूसरे के चरण धोने चाहिए। सेम पॉइंट, तृणादपि सुनिचेन, सेवा भावना। चैतन्य महाप्रभु के लीला में और एक उदाहरण है एक भक्त का जो इस तरह से थे, जिनका नाम था शुक्लांबर ब्रह्मचारी। वो भी इस श्लोक के मूर्तिमान स्वरूप थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का व्यवसाय था भिक्षुक, ही वॉज सिंपली अ बेगर, और भिक्षा मांगते घर घर में। अब भिक्षुक को लोग क्या देते हैं? कोई व्यक्ति भिखारी को गरम गरम पूरन पोली या स्वीट राइस नहीं देता होगा, वेरी रेयर कि आप भिखारी को पनीर सब्जी और परोठा मिल रहा हो, बहुत रेयर। लोग उनको टूटे हुए चावल के दाने देते हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी इसमें प्रसन्न थे। अगर कोई व्यक्ति नम्र है तो वह किसी भी चीज़ में प्रसन्न हो सकते। और वह घूमते थे नवद्वीप में मायापुर के पास, उनके गले में एक शोल्डर बैग था और उस बैग में, उस झोले में कुछ टूटे हुए चावल के दाने थे, और वो आनंदित रहते उसमें क्योंकि वो कृष्ण की स्मरण कर रहे थे। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न थे उनके व्यवहार से कि वो एक बार उनके पास में गए और छिप कर उनके बैग से चावल लेकर खाने लगे। सारे भक्तों को आश्चर्य हुआ, सब बोलने लगे कि भगवान ये आपके लिए योग्य नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते थे कि मेरे नम्र भक्त, मेरे भक्त जो नम्र हैं वो कोई तुच्छ से तुच्छ चीज़ भी देते हैं वो मेरे लिए पूजनीय है, वो मुझे बहुत आनंद देने वाले। एक बार तो चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी से कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ भोजन बनाओ, प्रसाद बनाओ। और शुक्लांबर ब्रह्मचारी, उनको बहुत आश्चर्य होता है, वो सोचते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ बनाने के लिए। लेकिन भगवान की आज्ञा से वो एक बहुत सुंदर प्रिपरेशन बनाते हैं जिसका नाम है गर्भखोद, गर्भोदक नहीं, गर्भखोद, एक स्वीट प्रिपरेशन होता है। और महाप्रभु उसके ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तरो रिवर सहिष्णु का डेफिनेशन। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में ही एक दिन चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे होते हैं, और उस प्रवचन का विषय होता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तियेव 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 गति, केवल हरि का नाम लेना। तो उस प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं पेड़ का मतलब, शुकीय न मागे, जब पेड़ सूख जाता है उसको पानी नहीं मिलता तो पेड़ कुछ मांगता नहीं है। अगर कोई पानी दे दे तो ठीक है, नहीं तो मांगता नहीं। और कोई काटने आता है तो पेड़ विरोध नहीं करता। इसका मतलब है अगर हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो जो हमें काटने आए, यानी लिटरली शरीर से या वचनों से, या हमारी बेइज्जती करने आए, या हमारे अपमान करके हमारे बारे में गलत बताने आए, उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए। एक चंदन का पेड़ है, और अगर एक कुल्हाड़ी के साथ चंदन के पेड़ को अगर काटा जाए तो कुल्हाड़ी पे भी चंदन की सुगंध आ जाती। तो एक सच्चा वैष्णव वो है अगर कोई उसका विरोध करना चाहता, कोई उसको कष्ट देना चाहता है तो व्यक्ति उसको धन्यवाद देता है। ये बहुत मुश्किल गुण है, बोलना आसान है, नहीं त्रिनादपि सुनिचे न, इज वेरी इजी टू स्पीक, बट दिस इज द प्राइस टू गेट कृष्णस मर्सी। तरोरी व सहिष्णु न का मतलब अपने फल दूसरों को देना, जो मैंने कष्ट किया, जो मैंने मेहनत की है उसके फल से दूसरे भक्तों को लाभ मिले। जैसे आप में से कई भक्त राधा कुंज बिहारी मंदिर के लिए मेहनत कर रहे हैं, मंदिर निर्माण करने के लिए, एक एग्जाम्पल है तरोरी व सहिष्णु न। आप ये नहीं सोच रहे कि उस मंदिर में मेरे लिए कमरा कहाँ होगा, आप सोच रहे हैं कैसे कृष्ण के लिए, वैष्णवों के लिए स्थान होगा। सेक्रीफाइस, यू कैन नॉट चैंट विदाउट द मूड ऑफ सेक्रीफाइसिंग, त्याग के बिना। और त्याग की एक कहानी भागवतों में रंतिदेव की। रंतिदेव कैसे वैष्णव थे, रंतिदेव उपवास कर रहे थे 48 दिन तक निर्जल। अभी हमारे लिए साल में एक दिन निर्जल होता है, शायद अगले हफ्ते है ना 14 तारीख को, ऑस्पिशियस डे साल का सबसे, वो दिन जिसका हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 14 तारीख या 15 तारीख सुबह का है, जब व्रत तोड़ने का समय। तो रंतिदेव वॉज फास्टिंग फॉर 48 डेज, 48 दिन तक फास्टिंग करते निर्जल। और आप जानते हैं जब फास्टिंग, जब व्रत पूरा होता है तो हम कितने उत्सुक होते हैं व्रत तोड़ने के लिए, 6:02 सवेरे या जो भी समय है। तो रंतिदेव व्रत तोड़ने ही वाले थे और उस समय एक ब्राह्मण आए, बोले मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे प्रसाद चाहिए। और रंतिदेव ने अपना आधा भोजन उनको दे दिया, सोचे थे आधा मैं लूँगा, तो आधा लेने जा रहे थे और एक शूद्र आया, बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो रंतिदेव ने वो भी दे दिया। ऐसा नहीं कि रंतिदेव को मालूम था किचन में और पड़ा ही है, बाद में ले लेंगे, उनके पास सिर्फ जल था। और जब वो जल पीने जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया, बोला मेरे कुत्ते बहुत प्यासे हैं, उनको पानी चाहिए। तो मैं होता तो बोलता तुम्हारे कुत्ते तुम देखो, मेरा इज़ नॉट माई डिपार्टमेंट, इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये मेरे काउंसिली नहीं है ये, यू ना आई डोंट केयर, माई एंड माई ग्रुप, यू ना माई एंड माई फॉलोअर्स। रंतिदेव गेव ऑल दी वाटर, पूरा पानी दे दिया उन्होंने। और फिर वो उन्होंने बताया वो श्लोक जो सुप्रीम श्लोक है, भागवत के इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है, द सुप्रीम रिलीजियस प्रिंसिपल इज टू बेयर सफरिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। यहाँ पर 25 दिसंबर को भी प्रवचन में, पुणे में ये प्रवचन में ये श्लोक, मतलब इसी टाइटल पे श्लोक। सबसे बड़ा धर्म का सिद्धांत क्या है, दूसरों के लिए कष्ट उठाना, तब हमारे हृदय से नाम प्रकट होता है, जब हमारे अंदर ये भावना है तरोर इव सहिष्णु। गौरंग महाप्रभु की लीला में वासुदेव दत्त ठाकुर ऐसे भक्त हैं, जो कि कृष्ण नरसिंह लीला में प्रहलाद महाराज थे। वे पिछले 18 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी के दिन मैं कुछ भक्तों के साथ अहोबिलम गया था। आपने सुने अहोबिलम, आप में से कोई भक्त गए हैं अहोबिलम? ये वो स्थान है जहाँ पर हिरण्यकशिपु का महल था और जहाँ पर खंभे से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। कृष्ण के पिता वसुदेव जी हैं, भगवान राम के पिता दशरथ हैं, नरसिंह भगवान के पिताजी वो खंभा हैं वो पिलर। आप में से कोई गए है वहाँ पर अहोबिलम? ये भी मैं आपको एक बार ले जाऊँगा सब पूना के भक्तों को। बहुत बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, करीब 2 घंटे ऊपर चढ़ना होता है और कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं, आधा रास्ता सीढ़ियाँ और बाद में ऐसे मंकी की तरह चढ़ना पड़ता है, बंदर की तरह, काफ़ी कष्टदायक यात्रा है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो अहोबिलम में प्रहलाद महाराज की हम कथा पढ़ रहे थे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान नरसिंह देव को कि मेरे को अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं जहाँ भी हूँ त्वद्वीर्य गायन महामग्न चित्तः, मैं जहाँ भी हूँ मैं आपकी कथा गा सकता हूँ, आई एम हैप्पी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। बट आई एम वरीड अबाउट द फूल्स एंड रास्कल्स हु आर ट्राइंग टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। मेरे को उन जीवात्माओं के दुख है जो इस भौतिक संसार में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति जिसने उनको जहर दिया, जिसने उनको सांपों के बीच डाला, जिसने उनको उठा के समुद्र में फेंक दिया, उस व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उनको क्षमा कर दो, मेरे पिता को क्षमा कर दो। और वही प्रहलाद जब गौर लीला में आते हैं वासुदेव दत्त ठाकुर के रूप में, शायद आप में से कुछ भक्तों ने देखा होगा वासुदेव दत्त ठाकुर का घर जो मामगच्छी में। वासुदेव दत्त ठाकुर से महाप्रभु पूछते हैं, वासुदेव मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? मान लो आज रात को आपके कमरे में भगवान स्वयं आते हैं और बोलते हैं वरदान मांगो, सतीश प्रभु क्या मांगोगे आप? पहला वरदान ये मांगना कि प्रवचन में जागता रहूँ मैं हरी हरी, हरी। ये मौसम बहुत अच्छा है इसलिए सब भक्तों को नींद आ रही है, तो जोर से बोलिए हरी 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 हरी। तो वासुदेव दत्त से पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए? आप सोचिए कुछ क्षणों के लिए, अगर भगवान प्रकट होकर पूछते हैं आपको क्या वरदान चाहिए था, आप क्या मांगोगे? शायद आप मांगोगे अगर भौतिक चीज़, भगवान मुझे एक सुंदर बंगलो दे दो जिसमें एक बड़ा कमरा आपके लिए भी होगा बाकी मेरे लिए होगा, या अगर आप भक्त हैं तो आप मांगोगे भगवान मंदिर जल्दी निर्माण हो जाए, या मुझे जप नाम जप में रुचि आ जाए, आप ये मांगोगे। लेकिन वासुदेव दत्त उससे भी ऊंचा मांगते हैं। वासुदेव दत्त क्या मांगते हैं? लेट ऑल लिविंग एंटिटीज गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। सारे जीव, सब जीव, चाहे वो पापी हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो मंदिर में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो चार नियम भंग कर रहे हो, सबको आपके धाम वापस ले जाओ। टेक देम ऑल बैक टू गॉड। और अगर आपको लगता है कि वो बहुत पापी हैं, दे आर नॉट एलिजिबल, उनके पाप का क्या होगा, तो उनके सारे पाप मुझे दे दो, मैं उनके पाप को ग्रहण करने को तैयार हूं, जिससे वो भगवान के धाम वापस चले। अभी क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट, उन्होंने भी ऐसी प्रार्थना की थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि मेरे अनुयायी जो हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनका उद्धार हो जाए। लेकिन वासुदेव दत्त उससे भी ऊंचा बोलते हैं कि सब जीवात्मा, चाहे मेरे अनुयायी हों, दूसरे धर्म के हों, जानवर हों, पशु हों, देवता हों, सब भगवान के धाम चले जाए और मैं उनका पाप भुगतता रहूं। इसको बोलते हैं सेल्फलेसनेस। जनरली हम सोचते हैं कि पहले मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, फिर मैं दूसरों को दूं। अगर ट्रेन में एक्स्ट्रा सीट है तो आप बैठिए, नहीं तो पहले मैं बैठ लूँ। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू हिमसेल्फ, बट वासुदेव दत्त इज विलिंग टू सफर फॉर अदर्स। और वासुदेव दत्त का ये गुण देखकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं वासुदेव ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप प्रहलाद हो, आप प्रहलाद के अवतार हो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, सब जीव भगवान के धाम चले जाएंगे, लेकिन आपको दुखी भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सबको पापों से मुक्त कर देंगे। तो ये वासुदेव दत्त ठाकुर की चेतना है। वो हरि नाम हमेशा ले रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब हम त्रिनादपि सुनिचे न बन जाते हैं, तो भगवान के नाम में क्या मांगना चाहिए। सब बोलिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। एक भक्त प्रार्थना करता है, न धनम न जन्म, ये पूरे दुनिया धनम के ऊपर है, राइट? अगर सब जगह पे न धनम कहा जाए, सारे बैंक सारे बिजनेस सब बंद हो जाए, नहीं कोई सर्विस करना चाहेगा बिना धन के? लेकिन एक भक्त है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है बिना धन की इच्छा के, बिना अनुयायी के, बिना सुंदर स्त्री या पुरुष की इच्छा के, वो यही चाहता है, हमें जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतद भक्तिर अहितुकी त्वयि, बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ आई वॉन्ट टू सर्व यू माई लॉर्ड अनकंडीशनली, मुझे जन्म जन्मांतर आपकी सेवा चाहिए। अगर आपकी प्रसन्नता है कि मैं नरक में जाऊं, तो नरक भी अच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने उनको आज्ञा दी कि आप धरती पे जाओ प्रचार के लिए, प्रभुपाद जी बोले मेरी इच्छा नहीं थी आने की, आई डिडंट वॉन्ट टू कम, लेकिन कृष्ण ने बोला आप जाइए कुछ पुस्तक लिखिए। एक शुद्ध भक्त के लिए धरती पर आना एक नरक के ही समान है, वैकुंठ गोलोक छोड़कर नरक में आना, लेकिन वो ये करने को तैयार हैं क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो, वॉन्ट्स टू सर्व कृष्ण अनकंडीशनली। जब गोपियों को पता चला कि कृष्ण को सर दर्द है और उनका सर दर्द दूर हो सकता है उनके चरणों की धूल से, तो गोपियां तैयार हो गई कृष्ण को चरणों की धूल देने। जस्ट सर्विस अनकंडीशनली, बिना किसी कुछ चाहे। और अंत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्त को नाम जप में कैसे भगवान को पुकारना चाहिए। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थितधूलि सदृशम विचिन्त्य। अय नंद तनुज, ओ माई डियर सन ऑफ महाराज नंद, कृष्ण के जो नाम उनके भक्तों से जुड़े हैं वो कृष्ण को बहुत अच्छे लगते हैं, नंद नंदन, यशोदानंदन, गोपीनाथ, गोपीजन वल्लभ, गोविंद, गोपाल, कुंज बिहारी, ये नाम जो उनकी लीलाओं से जुड़े हैं वो कृष्ण को बहुत पसंद है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये नाम जो हैं वो कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। और दूसरे सेकेंडरी नाम है जैसे परमात्मा, ब्रह्मन, जगदीश्वर, ये नाम भी अच्छे हैं लेकिन ये कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान कर। इसलिए भक्त भगवान को संबोधित करते हैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, आई आई यानी ओ, अरे हे नंद नंदन कृष्ण, किंकरम माम, मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं भवसागर में गिर गया हूँ, पतितम माम विषम भवम बुधो, मैं भवसागर में गिर गया हूँ, कृपया आप मुझे उठाइए और मुझे भवसागर से बाहर निकालें। इस तरह से हम भगवान को पुकारना चाहिए। जैसे अगर आप डूब रहे हो तो आप कैसे, अगर कोई नौका दिखाई पड़ती है तो आप कैसे पुकारोगे, आप डूब रहे हो तब नौका को देखकर ऐसे नहीं बोलोगे हरि बोल हरि बोल, यू बी वेरी अवेक, आप जाग रहे होगे उत्सुकता से पुकारो। इस उत्सुकता के साथ भगवान के नाम को पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु यही उपदेश अपनी माता को करते हैं, शची देवी को। जब चैतन्य महाप्रभु गया से लौट कर आते हैं वो कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे होते हैं, उनके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, उनकी पाठशाला में विद्यार्थी उनसे पूछते हैं कि हे निमाई पंडित हमें ग्रामर सिखाओ, व्याकरण। निमाई जवाब देते हैं सारे व्याकरण का मूल है कृष्ण। सब बोलते हैं निमाई वर्णाश्रम का अर्थ बताओ, निमाई बोलते हैं सारे वर्ण और आश्रम के निर्माण करने वाले हैं कृष्ण। 6 घंटे तक निमाई बोलते रहते हैं और अंत में पूछते हैं कैसे लगा मेरा प्रवचन, और सब बोलते हैं आपने कुछ बोला ही नहीं सिवाय कृष्ण के। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप दूसरे टीचर के पास चले जाओ, अब मैं आपको और कुछ नहीं सिखा सकता। लेकिन निमाई के सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि हम आपके साथ सीख चुके हैं, हमें आपसे प्रेम है, इसलिए हम और किसी टीचर के पास नहीं जाएंगे, अगर ब्रह्मा जी भी आए तो हम उनसे नहीं सीखेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे, हम भी गाते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो घर में लौट कर आए, शची माता ने देखा कि निमाई की आंखों से आंसू आ रहे हैं, उन्होंने पूछा निमाई क्या हुआ, आज पाठशाला में क्या सिखाया। चैतन्य महाप्रभु बोले मैंने आज कृष्ण नाम के बारे में बताया, कृष्ण नाम ही परम सत्य है, कृष्ण नाम ही शाश्वत है, कृष्ण ही भगवान है, ब्रह्मा शिव और विष्णु सब कृष्ण के ही दास हैं, जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों को छोड़कर और किसी की सेवा करना चाहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो व्यक्ति मानव शरीर मिलने के बाद कृष्ण को नहीं पुकारता हे कृष्णा करुणा सागर जगत जीवन भक्त वत्सल, जो कृष्ण के नामों को नहीं पुकारता वो व्यक्ति सारे शास्त्रों को सीखने के बाद भी उसको कुछ ज्ञान नहीं मिला है। इसे मान लो कोई गधा है, जो कोई गधा है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के बुक्स रोज लेकर जा रहा है, तो 5 साल ले जा रहा है लेकिन उसको बीटेक डिग्री नहीं मिलती, उसको गधा है इसलिए। ऐसे अगर कोई व्यक्ति वेद पुराण गीता भागवत चैतन्य चरितामृत पढ़ लेता है और कृष्ण का नाम सच्चे दिल से नहीं पुकारता तो वो गधे के समान है। और फिर उसकी गति क्या होती है, जो कृष्ण की शरण में नहीं आता उसको फिर से अगला शरीर लेना पड़ता है, उसको माँ के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि कैसी गति होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको बहुत प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कभी कभी आपको ट्रेन में, लोकल ट्रेन में या बसेस में बहुत भीड़ होती है तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे घुटनों के बल बैठना हो, और वो भी 9 महीने के लिए। हरे कृष्ण, प्रवचन में तो ठीक है, बीच बीच में नींद खुल जाती है, लेकिन लेकिन माँ के गर्भ में तो कुछ बाहर निकलने का कोई अवसर ही नहीं होता। और आसपास बहुत, मैं वर्णन नहीं करना चाहते, आप सब जानते हैं क्या मलिन पदार्थ होते हैं, कीड़े काट रहे होते हैं, और जीव उस समय ऐसी स्थिति में होता है कि वो कीड़ों को हटा भी नहीं सकता, ही इज हेल्पलेस, तो कोई आश्रय नहीं होता। और उस स्थिति में वो जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे कृष्णा, हे गोविंदा, मुझे इस दुख से बाहर निकालो, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं आपकी सेवा करूँगा, हे कृष्ण मुझे भक्तों का संग दो, मैं आपको छोड़कर, आप कल्पवृक्ष के समान हैं, मैं आपको छोड़कर भौतिक चीज़ों के प्रयास में लगा रहा, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, हे भगवान जहाँ पर वैष्णव नहीं है वो स्थान में मुझे मत भेजना, मुझे वहीं जन्म दो जहाँ पर वैष्णव हों, अगर स्वर्ग में भी जन्म मिले, अगर स्वर्ग में भक्तों का संग नहीं है, संडे प्रोग्राम नहीं है, प्रसाद नहीं है, तो क्या लाभ, लेकिन अगर नरक में भी हो और इस्कॉन का सेंटर है और भक्त प्रेम से गा रहे हों, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अगर नरक में भी कीर्तन है तो वो स्थान वैकुंठ है। एक्चुअली वैकुंठ कहाँ है, यत्र गायंती मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन कर रहे हैं वही स्थान वैकुंठ है। इसलिए भगवान मुझे आपका स्मरण हो, मुझे ये डर है कि कहीं बाहर आने से मैं आपको भूल नहीं जाऊँ, इसलिए भगवान मुझे अपने गर्भ में ही रखो, अगर गर्भ में रहने से आपका स्मरण अच्छा होता है तो मुझे गर्भ में ही रखो। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत बोला है वो गर्भ में ही रहे, 16 साल तक बाहर ही नहीं आए, पिताजी बोल रहे थे कम आउट, बाहर आओ बेटे, बाहर आओ, हरि बोल नहीं, दिस इज़ गुड प्लेस, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई जप में कोई बाहर उठना नहीं, प्रसाद के लिए भी बाहर नहीं आना पड़ता, गर्भ यानी गुफा जैसे, सब सप्लाईज अंदर ही हैं, यू नो, अंदर ही बाथरूम, अंदर ही किचन, अंदर ही सब कुछ। द चाइल्ड थिंक सुखदेव गोस्वामी डिड नॉट वॉन्ट टू कम आउट, 16 ईयर्स, 16 साल वहीं पर रहे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीव प्रार्थना करता है, इफ़ आई कैन रिमेंबर यू लेट मी स्टे इन द वूम, लेकिन अगर आप मुझे बाहर निकालना चाहते हो तो मुझे भक्तों का संग दो, मुझे भक्तों का संग दो, हे कृष्ण मैं आपका नाम स्मरण करना चाहता हूँ, जन्म जन्म मैं आपको भूल चुका हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा भजन बोलते हैं, भूलिया तुम्हारे संसार भीतरे पाए नाना विधि व्यथा, मैंने इतने प्रकार के दुख सहन किए भगवान आपके लिए, जननी जठरे, या माँ के गर्भ में, क्योंकि माँ के गर्भ में रहना जो फायर ऑफ डाइजेशन होती है अग्नि, वो बहुत कष्ट प्रदान करती, और उस स्थिति में जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकालो। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि माँ के घर में बच्चे जब प्रार्थना करता है तो उन प्रार्थनाओं के फल से उसकी पीड़ा कम हो जाती है और फिर वो बाहर निकलता है, और जैसे बाहर निकलता है पहले वो रोने लगता है, राइट, आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, बच्चा रोने लगता है और फिर सब आसपास के रिश्तेदार उसको देते, ओ कितना सुंदर है ये, गोपाल जैसे, हरि बोल, हैप्पी बर्थडे टू यू, और सब भूल जाता है वो, अगर उसको भक्तों का संग नहीं मिलता तो भूल जाता है और फिर वो माया में गिर जाता है, फिर स्कूल, 5 साल से स्कूल, आजकल तो 3 साल से स्कूल, 2 साल से बालवाड़ी स्कूल, और उसके बाद फिर कॉलेज, फिर उसके बाद विवाह, फिर उसके बाद परिवार जीवन, फिर उसके बाद बच्चों का विवाह, फिर उसके बाद वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, और फिर से माँ के गर्भ में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को बोलते हैं, हे माता, इसलिए तुम अगर माँ के गर्भ में फिर नहीं जाना चाहते तो भक्तों का संग करो और कृष्ण की पूजा करो, मन से कृष्ण के बारे में सोचो और जीवा से हमेशा गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से अपनी माता को भी उपदेश करते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे कृष्ण नाम का आश्रय लेना चाहिए। और शाम के समय जब चैतन्य महाप्रभु अपने मित्रों से मिलते हैं, विद्यार्थियों से, तो विद्यार्थी बोलते हैं, निमाई आपसे ज्ञान ग्रहण करने के बाद अब हम किसी और टीचर के पास नहीं जाएंगे। आप बताइए, आपने बताया कि हरि नाम एकमात्र तरीका है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यथा, सिवाय हरि नाम के और कोई उपाय नहीं है। लेकिन कैसे भगवान का नाम लेना है? और फिर महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया और वो कीर्तन उन्होंने शुरू किया। हरे कृष्णा मंत्र तो गाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने शुरू किया, दो मिनट के लिए हम सब गाएंगे, किसी को मालूम है क्या शुरू किया उन्होंने? हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदाना, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदाना, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामो 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि नाम प्रभु की जय। अंत में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमें चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक को महाप्रभु बोलते हैं कंठे धरी, ये जो श्लोक है त्रिनादपि सुनीचे न, इसको गले में कंठी माला की तरह बांध के रखना है। इस श्लोक के द्वारा हरि नाम प्रकट होगा और हरि नाम प्रकट होने से कृष्ण की प्राप्ति होगी, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे इस्कॉन संस्था का उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम। तो हम सब कृपया सब आंख बंद करिए, भगवान से गुरुदेव से प्रार्थना करें कि ये शरीर छोड़ने से पहले हमें एक बार हरि नाम हृदय में प्रकट हो सके, शुद्ध नाम, और हमें ये गुण मिल सके जो महाप्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय है, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुन अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सब लोग प्रार्थना करें भगवान से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। देयर एनी क्वेश्चंस? वी हैव 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन। यस प्रभु।
Like in sixth canto, like when describing the Ajamil's pastime, like Prabhupada writes that by his continuous chanting of the holy name Narayan, all his sinful reactions got purified. I mean, this was before he became pure devotee. So does that mean that, I mean, like even we have chanted many names of Hare Krishna before actually knowing the glories of the holy name? So before we started reading a philosophy, so does that mean that all of us are completely purified of all of our sinful reactions? So if that is so, then why is chanting and practicing devotion becoming so tough now? That does it mean that after
one may be free from sins, but he may still be offensive. One may not be doing any more sins, but there may be offenses. Like inattention is an offense. When being inattentive is offensive. Ajamil's story is an example to show that somehow or other, if one takes the name of God, he becomes purified. But it takes different amount of time for different people. It's very difficult to say at what stage you or I am. But by continuous chanting, sins, not only sins, but offenses also go away. इनका प्रश्न था अजामिल के विषय में, तो मैं इसके जवाब में बता रहा था कि ये समझना मुश्किल है कि कौन किस अवस्था में है भक्ति के, लेकिन कंटिन्यूअस नाम जप करने से न केवल पाप दूर हो जाते हैं बल्कि अपराध भी दूर हो जाते हैं। प्रभुपाद एक परपोर्ट में लिखते हैं, द वे टू ओवरकम 10 ऑफेंसेस इज टू चैंट 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे हरे कृष्णा बोलते। बट वी आर नॉट हैविंग टेस्ट, so how to chant, how to get taste? By chanting. जैसे कोई व्यक्ति शराबी कैसे बनता है, मैं शायद आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन जैसे शराब पीने से उसको शराब की आदत पड़ जाती, ऐसे हमें नाम में रुचि नहीं है तो भी नाम जब करते 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 अपने आप रुचि जागृत हो, सो सेल्फ जनरेटिव प्रोसेस। एंड अजामिल, वन थिंग अबाउट अजामिल वॉज, अजामिल ने गलती से अपराध किए थे, पाप किए थे, उसने जानबूझ के पाप नहीं किए थे। अजामिल ये नहीं सोच रहे थे हाँ कि मैं पाप करूँगा और बाद में मैंने पढ़ा है शास्त्रों में कि भगवान का नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट।
बट देयर वाज अ स्टेज इवन व्हेन वी वर ओनली सिनफुल,
हाँ
देयर वाज अ स्टेज व्हेन वी आर सिनफुल बट नॉट ऑफेंसिव, आई मीन लाइक व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, the first few mahamantras we chanted, at that time we didn't know the glories of the holy name, we didn't chant it because it will purify of all our sins. So does it mean that we are also all purified of all our sins and now the only thing is left is to achieve pure love of God? Is that generally true?
I should think that yes, you are completely pure, but you should not think, for you should think that I am very sinful. प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं नाम जप कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे सारे पाप पहले से दूर हो गए हैं, तो भक्त को ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं बहुत पापी हूँ, हमारा जीवन सदा पाप रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर जप कर रहे थे उसके बाद लिख रहे हैं भजन ना, डर भक्ति विनोद ठाकुर जप के बाद लिख रहे हैं कि हमारा जीवन पूर्ण पुण्य है, ना ही को पुण्य पापे रलेश। भक्ति विनोद ठाकुर थिंक इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर सिनफुल और नॉट सिनफुल, यू शुड थिंक आई एम सिनफुल, that way you will make advancement. चाहे हम पापी हों या नहीं हों, तो हमें सोचना चाहिए जगाई मदाई से ज़्यादा पापी मैं हूँ। रूप और सनातन जब चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं ऐसे कि मैं जगाई और मदाई से भी ज़्यादा पतित हूँ, जो मेरा नाम लेगा वो पापी हो जाएगा और जो मेरा नाम सुनेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाए। So he was thinking like that. Can discuss afterwards, I think. We have 2 minutes more. Anybody else has any questions? Yes, Prabhu.
Hare Krishna, Prabhuji.
Hare Krishna.
Prabhuji, you told that we should pray to holy name. Means holy name as a Harinam. So when we pray to deities, it's very easy to pray because form of the deities is in front of us and we see the beauty of the deity standing in front of us. So we can pray. But praying to holy name means doesn't come how to pray, thinking what we can pray to holy name.
We should know that the name of God is non-different from God. Prabhuji pooch rahe hain ki main naam ko, murti ko prarthna karna to aasan hota hai, wo dikhai padte hain. Lekin naam ko kaise prarthna karein? हमें जानना चाहिए कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है. या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डीटीज़ के सामने जाके बोले कि मुझे नाम रुचि दो, तो वो भी ठीक है अगर आपको वो ज़्यादा आसान है. यस
कृष्ण प्रभु, एज फार एज हैप्पीनेस इज कंसर्न, लाइक एज फार एज हैप्पीनेस इज कंसर्न, like when we dance we enjoy very like anything, and when somebody embrace any higher like senior duty embraces me, then I feel really nice. So I got really such kind of happiness. And I want to say another thing is that when I have nice academics also, I got some kind of happiness, isn't it? So afterwards I forgot my that happiness, and when senior duty embraces me, then I feel happiness, but I forgot afterwards, after a few hours. So what is the difference between this happiness and this happiness? I know that spiritual happiness is eternal, but so how to compare the both things?
Spiritual happiness means you should know that Krishna is always embracing you. How will you feel when Krishna is embracing you?
Very nice.
A pure devotee, he is always having spiritual happiness because he is feeling that I am being embraced. I am embracing Krishna's lotus feet. When you are chanting Hare Krishna, you are embracing Krishna. So just go on chanting, you will realize it. You are already with Krishna, but you have not realized it. So by going on chanting, you will realize that Krishna is there in the form of the holy name.
Thank you, Prabhu.
Anybody else had question? Okay. Stop here. Thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री राधा कुंज बिहारी भक्तों की जय. श्री गौर निताई की जय. राधा कुंज बिहारी की जय.